नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र में नई सरकार गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज, एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा नेतृत्व में विचार विमर्श जारी। नीट परिणामों को लेकर विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा उच्च प्रदर्शन मानकों के कारण स्कोर में वृद्धि। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत के लिए अगले चार दिन के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। टी20 विश्व कप क्रिकेट में पहली बार खेल रहे अमरीका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर चौंकाया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीएस और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले आज सुबह जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल गठन पर एनडीए सहयोगियों के साथ चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल श्री नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ लंबी बैठकें की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े सहित अन्य लोग शामिल हुए। जदयू के कई नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। उधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी आगे की रणनीति तय करने के लिए नई दिल्ली में बैठकें की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर हुई। इस अवसर पर श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी के लिए भारी राजनीतिक क्षति और नैतिक हार है। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा नेतृत्व में विचार विमर्श जारी है। केरल से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता बिनॉय बिस्वाम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एलामारम करीम और केसीएम पार्टी के नेता जोस के मणि का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। केरल और महाराष्ट्र के लिए नामांकन इस महीने की 13 तारीख तक भरे जा सकते हैं। मतदान 25 जून को कराया जाएगा। इस बीच राज्यसभा के 9 सदस्य हाल ही में हुए आम चुनाव में जीत गए हैं। इनमें असम से सर्बानंद सोनोवाल और कामाख्या प्रसाद तासा, बिहार से विवेक ठाकुर और मीसा भारती, हरियाणा से दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, मध्यप्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव और राजस्थान से केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 4 जून को शेयर बाजार में आई गिरावट की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में श्री गांधी ने कहा कि बाजार में गिरावट के कारण खुदरा निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
Why did PMNHM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? So we demand a joint parliamentary committee to investigate this.
भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस के दावों का खंडन करते हुए कहा कि राहुल गांधी बाजार के निवेशकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री गोयल ने दावा किया कि चुनाव परिणाम वाले दिन भी लोगों को फायदा हुआ है। श्री गोयल ने कहा कि नुकसान विदेशियों को हुआ है जबकि भारतीय निवेशकों को फायदा हुआ है।
लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार कर।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुनावी प्रक्रिया की सफलता पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को बधाई दी। मतदान के प्रबंधन और अधीक्षण में शामिल आयोग, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों, अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के प्रयासों की राष्ट्रपति ने सराहना की। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने कल आदर्श आचार संहिता हटा ली। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। हालांकि विधान परिषद के द्विवार्षिक उपचुनाव के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता अभी लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारों के उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। एजेंसी ने नीट यूजी परिणामों के संबंध में हाल के विवाद के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण जारी किया। एजेंसी ने आगे कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने माना कि एक विकल्प के स्थान पर दो विकल्पों को सही माना जाना चाहिए। छात्र छात्राओं की चिंताओं की जांच के लिए गठित शिकायत निवारण समिति ने कहा कि परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया था और ऐसे उम्मीदवारों को उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर अंकों के साथ मुआवजा दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से समिति ने सुनिश्चित किया कि इन केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया। भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने कल शाम मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कमांडेंट के साथ वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया। ये आयोजन भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों के नाविकों को उनके समर्पण, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी भावना के प्रदर्शन के लिए साथ लाता है। इसमें पूरे भारत से प्रतिभागी शामिल होते हैं। आयोजन की तैयारी के लिए प्रतिभागियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सेना नौकायन में प्रशिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रतिभाशाली नाविकों का चयन करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। श्रीलंका के कोलंबो में कल भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने योग महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। 10 दिवसीय योग महोत्सव 13 से 22 जून तक श्रीलंका के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर अलग अलग विषयों के साथ आयोजित किया जाएगा। ओडिशा में हाथियों की संख्या वर्ष 2017 के मुकाबले इस वर्ष 2098 हो गई है। इस वर्ष हाथियों की संख्या में 122 की बढ़ोतरी हुई है। हाथियों की गणना के लिए राज्यभर में 1905 गणना इकाइयों में 1214 मचान बनाए गए थे। इस कार्य के लिए 5700 से अधिक कर्मियों को लगाया गया था। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सहित देश के अनेक भागों में अगले 4 दिन के लिए गरज के साथ वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने बताया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मॉनसून प्रगति पर है।
मेनली जो वार्निंग है वो हैवी रेनफॉल का है, जैसे महाराष्ट्र का जो मानसून का जो प्रोग्रेस है अभी नेक्स्ट 2-3 दिन तक जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आ सकता है नेक्स्ट 2-3 दिन, इसलिए ये सब जगह में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। मेनली जो कोंकण का एरिया है उसके लिए नेक्स्ट 2-3 दिन तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सोमवार तक गर्म हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ओडिशा में भी अगले 2-3 दिन तक गर्म हवाएं जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली में अगले 2 दिन तक गरज के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात मेजबान अमरीका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया।
कल रात डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में इस बार के T20 विश्व कप का पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टाई पर समाप्त होने के बाद अमेरिका ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पहले क्षेत्र रक्षण करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को 159 रनों पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बराबर कर लिया। फिर हुए सुपर ओवर में अमेरिका ने 1 विकेट पर 18 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 1 विकेट पर 13 रन ही बना सका। कल दूसरे मैच में बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में स्कॉटलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आज शाम न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। लक्ष्य सेन ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को 21-9, 21-15 से हराया। रिजर्व बैंक आज वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। अप्रैल में पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 6.5% पर ही रखा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने केंद्र सरकार में गठन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है मोदी की शपथ 9 को मंत्रालयों पर मंथन। राजस्थान पत्रिका लिखता है भाजपा के मैराथन मंथन में फॉर्मूले पर हुआ विचार, टॉप 4 पर समझौता नहीं, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय को भाजपा अपने पास रखेगी। पत्र लिखता है निर्वाचित सांसदों की सूची सौंपी, आदर्श आचार संहिता समाप्त। दैनिक जागरण ने सरकार गठन में जदयू का पक्ष दिया है, अग्निपथ योजना की समीक्षा और समान नागरिक संहिता पर राज्यों से वार्ता के पक्ष में जदयू, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की भी इच्छा जताई, शपथ ग्रहण से पहले अग्निपथ पर एनडीए। लिखता है नवभारत टाइम्स जेडीयू ने कहा लोगों में अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराजगी। हिंदुस्तान मोदी 3.0 शीर्षक से लिखता है एनडीए आज दावा पेश करेगा, दिनभर बैठकों का दौर, भाजपा शासित सभी राज्यों के सीएम दिल्ली तलब। पंजाब केसरी ने लिखा है भाजपा निभाएगी गठबंधन धर्म, गैर जरूरी मांगों पर नहीं झुकेंगे। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है नई लोकसभा में आधे से ज्यादा नए चेहरे, 280 नवनिर्वाचित सदस्य पहली बार सदन में प्रवेश करेंगे। लोकसत्य ने लिखा है नए चुने गए सांसदों में से 251 पर क्रिमिनल केस, इनमें 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। जनसत्ता ने मतदान प्रतिशत पर गुणा भाग शीर्षक से लिखा है जीत ही नहीं जीत के अंतर पर भी असर, भाजपा के मत फीसदी में कुछ गिरावट, कांग्रेस के मत प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी। दिल्ली जल संकट पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपनी सुर्खी बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है हिमाचल आज से दिल्ली को देगा अतिरिक्त पानी, शीर्ष अदालत ने कहा हिमाचल से आने वाले पानी के प्रवाह को सुगम बनाए हरियाणा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर ध्यान आकर्षित करती है सीआरपीएफ में पहली बार खानसामों जलवाहकों को पदोन्नति, सीआरपीएफ की 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार कुल 2600 खानसामों और जलवाहकों को पदोन्नत किया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज, एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श जारी। नीट परिणामों को लेकर विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा उच्च प्रदर्शन मानकों के कारण स्कोर में वृद्धि। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत के लिए अगले चार दिन के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। टी20 क्रिकेट विश्व कप में पहली बार खेल रहे अमरीका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर चौंकाया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।